अगली दुआ देखते हैं कि नींद में घबराहट या वहशत के वक्त की दुआ। कभी आप उठ जाते हैं, कभी डरावना ख्वाब आता है, कभी बंदा डर ही जाता है, कभी उसको ऐसे लगता है कि कमरे में कोई है, कभी तन्हाई का एहसास होता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर से जो दुआ है वो क्या, और ये लिख के रख भी रख लीजिए, कभी कोई आपसे पूछ भी लेता है कि कभी रात को डर लग गया, कभी बच्चा कमरे में आता है मामा डर लग रहा है, कभी भी कोई कैफियत हर एक के अपने हालात से होती है। तो आपने इंशाल्लाह ये दुआएं याद रखनी है। आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाती मिन गदबिही व एकाबिही व शर्र इबादिही व मिन हमजाति शयातीनी व यहदुरून। मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के ज़रिए से पनाह मांगता हूँ इसकी नाराज़गी और इसकी सज़ा और इसके बंदों के शर और शैतानों के वसवसा डालने, गुनाहों पर उभारने और उकसाने से, और इस बात से कि वो शैतान मेरे पास आए और मुझे बहकाएं। ये रिवायत है अबू दाऊद की 3893 और तिर्मिज़ी 3528। क्या पता चला, इंसान हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है और ख्वाहिश भी रखता है कि शैतान मुझसे दूर भाग जाए, शैतान मेरे पास ना आए। ये इतना बड़ा एक इंसान के दिल में सवाल होता है और इसकी फिक्र लगी होती है कि आउज़ु बिकलिमात इल्लाह तामात। देखिए यहाँ कलेमात की बात है ना, तो अल्लाह के मुकम्मल कलेमात के जरिए से पनाह मांग, तो ये क्या होते हैं? आप कुरान में कई जगह देखेंगे, जैसे सूरत अल-कहफ के आखिर में, सूरह लुकमान के आखिर में, कि अगर अल्लाह के कलेमात लिखने चाहो तो तुम्हारी स्याही खत्म हो जाए, तुम्हारा पानी खुश्क हो जाए, लेकिन अल्लाह के कलेमात कम नहीं होते। तो इससे क्या मुराद है? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ चूंकि दुआओं का सेशन हल्का फुल्का सा है, इसमें हम तफसीर तो नहीं करते, लेकिन मैं अल्लाह के मुकम्मल कलेमात के जरिए से पनाह मांगता हूँ इसकी नाराज़गी, इसकी सज़ा और इसके बंदों के शर और शैतानों के वसवसा डालने से और इस बात से कि शैतान मेरे पास आए। मुराद क्या है? जितनी भी पनाह की दुआएं अल्लाह ने सिखाई हैं, जैसे आप देखते हैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फलक, मुअव्विज़ात हैं जो बल्कि कुल हुवल्लाहु अहद है, फिर इस तरह औज़ु बिकलिमात इल्लाहित तामात, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रुहु, फिर इसी तरह आयतुल कुर्सी। यानी मुराद है कि अल्लाह ने जितने भी कलिमात सिखाए हैं पनाह के, मैं उन सब के जरिए अल्लाह की पनाह लेता हूँ। किससे? नाराज़गी से। देखिए जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती, फिर उसकी सज़ा और इसके बंदों के शर और शैतानों के वसवसा डालने से। क्या होते हैं शैतानों के वसवसे? कुछ नहीं होता, कर लो, देख लो, कोई बात नहीं, बाद में माफ़ी मांग लेना। कौन देखता है, किसको पता चलता है? ये होते हैं वसवसे। और इस बात से कि वो शैतान मेरे पास आए और मुझे बहकाए। इंसान वाकई डरा हुआ है, सहमा हुआ है और एकदम खौफ ज़दा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा अगर मैंने अपने आप को अल्लाह की पनाह में न दिया। तो आप भी इस शऊर के साथ दुआ सीखिए और इसको मांगिए और जहन में वो सारी तहफ्फुज़ की दुआएं ले आइए जो कि आपने अभी तक सीखी हैं।
أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
आप देखेंगे कि जिस शऊर के साथ आप दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ताला आपका शऊर उतना भी खोलेगा और आपको खुद महसूस होगा कि आपको घबराहट अब नहीं होती, आपको डर नहीं होता, बल्कि आपने देखा कि इस दुआ में तो स्पेशली बंदों के शर की भी बात है। तो बंदों का शर तो हमें हर वक्त ही लगा रहता है ना, अक्सर तो हम अपने जैसे इंसानों से ही नाराज़ होते हैं, शैतान से तो कम ही लोग नाराज़ देखे गए। तो हमेशा ये दुआएं हमें दोहरा फायदा देती हैं, एक सुन्नत समझकर पढ़ने का, दुआ मांगने का अजर, और दूसरी तरफ यह है कि हमारे डे टू डे जो मामला चल रहे होते हैं, रोज़मर्रा के जो मामला हैं, उसके अंदर भी ये दुआएं हमें मदद देती हैं। और शर्त वही है कि आपने जो भी मांगना है, जो भी सोचना है, ये आप हमें इससे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि दिल दिमाग की हाजिरी, जिसको कहते हैं ना हजूरिये कल्ब के साथ, तो फिर अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेंगे और इंशाल्लाह आपको ये सारी दुआएं मुहैया की जाएंगी। आप लोग जो बाहर से पूछ रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको टेक्स्ट, आपको दुआएं, ये सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से मिलेंगी। और आप इस ऑडियो को जो वीडियो की सूरत में या ऑडियो की सूरत में इस वक्त भी आप सुन रहे हैं, इसमें से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अभी हम चलेंगे अगली दुआ पे, और वो क्या है कि बुरा ख्वाब आए या अचानक आंख खुल जाए तो क्या करें, 3 दफा अपनी बाईं तरफ थूके, शैतान और अपने इस ख्वाब की बुराई से 3 दफा अल्लाह की पनाह मांगे, ये ख्वाब किसी को न सुनाए, जिस पहलू लेटा हो इसे बदल दे, अगर चाहे तो उठकर नमाज पढ़े, यानी 2 नफिल पढ़ ले। और ये रिवायत सही मुस्लिम की है, 2263। और इसी तरह से जो शख्स रात को किसी वक्त बेदार होकर ये कलेमात कहे तो इसे बख्श दिया जाता है, अगर कोई दुआ करे तो वो कबूल होती है, और अगर वजू करके नमाज पढ़े तो इसकी नमाज कबूल होती है, मुराद इधर भी नफिल है। और दुआ क्या है, यानी अब आप देखिए कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ना, बुरा ख्वाब देख लिया जाए तो क्या करें, तो ये दुआ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, सुभान अल्लाह वल हम्दु लिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अजीम रब्बिग फिरली। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाहत है और इसी के लिए हर किस्म की तारीफ है, वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है, अल्लाह ताला पाक है और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है, और बुराई से बचने की हिम्मत है ना नेकी करने की ताकत, मगर बुलंदी और अजमत वाले अल्लाह ही की तौफीक से, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे। यानी कैसे इंसान तड़पता है कि अल्लाह बस मुझे अपनी बख्शिश की फिक्र है। और रिवायत ये बुखारी की है 1154 और इब्ने माजा 3837। तो इस दुआ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि रात को अगर कभी कोई ख्वाब ऐसा आ जाता है, घबराहट होती है, वहशत होने लगती है, अचानक आंख खुल गई तो क्या करेंगे, यनफुसन जिसारी ही सलासन यस्तईजु बिल्लाहि मिनश शैतानी ومن شر ما رأى 3 مرات لا يحدث بها أحدا يتحول عن جنبه الذي كان عليه। ये सारी चीज़ें हमने उर्दू में देख ली कि अपने बाएं तरफ 3 दफ़ा थूकिए, ये भी एक किस्म का शैतान को भगाना होता है, फिर शैतान और अपने ख्वाब की बुराई से 3 दफ़ा अल्लाह की पनाह मांगे, ये ख्वाब किसी को ना सुनाए, जिस पहलू पर लेटा हुआ है उसको बदल दे, तो इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। और फिर यकूम युसल्लीन अरादा जालिक, इरादा बन जाए तो उठकर नमाज पढ़ ले, उठने को दिल चाहे तो उठ जाए और नमाज पढ़ ले। और ये मुस्लिम की रिवायत है 2263। और जो शख्स रात को ये कलिमात पढ़कर सोता है ना, यानी जो रात को किसी वक्त बेदार हुआ फिर ये कलिमात पढ़े, तो इसे बख्श दिया जाता है। कोई दुआ करे तो कबूल होती है, और अगर वुजू करे तो नमाज कबूल होती है। आप देखिए कितनी श्योरिटी है ना कि दुआ करेंगे तो ज़रूर कबूल होगी, तो कौन है जो इस दुआ से फिर महरूम रहे। और आप देख ही रहे हैं कि दुआ के अल्फाज भी कितने खूबसूरत हैं। कैसे हम इन दुआओं में अपने अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि मालिक तू हमारे लिए इस चीज़ के ऊपर अमल करना आसान कर दे। आइए ज़रा मांगते हैं इनको।
ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहुल मुल्क वलहुल हम्द लहुल मुल्क वलहुल हम्द وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبِّ اغْفِرْ لِي رب اغفر لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي
آمین ثم آمین. اور رات کو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا خوبصورت تعلق بن گیا تو کم ہی امید ہے اس بات کی کہ دن میں اس کی نافرمانی ہوگی. آپ دیکھیں کہ یہ جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات ہیں نا، تو یہ بڑے غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی کا رخ بھی بدل دیتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو یا کسی اور کو اچھے کاموں میں لانا چاہتی ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں. ویسے بھی ان دعاؤں سے کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے حصار میں آئیں گے، شیطان سے دور ہوں گے. تو جب شیطان ہم سے دور ہو گیا تو پھر بہت سارے کام جو ہم اپنے نفس کے علاوہ شیطان کے کہنے پہ بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بچ جائیں گے. چلیے، یہاں تک تو تھیں سونے کی دعائیں اور رات میں اٹھنے کی دعائیں. اب دیکھتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے وقت جب دعائیں یا جب بھی نیند سے بیدار ہوں، اور آف کورس ایمان والا نماز سے پہلے ہی بیدار ہو جاتا ہے، تو رات کی نیند دیکھیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ جب صبح میں آپ اٹھیں، اور اگر دن میں بھی کبھی سوتے ہیں تو بھی اٹھیں، تو کیا مانگیں؟ نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں. نیند سے بیدار ہونے والا اپنا ناک 3 دفعہ جھاڑے، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. یہ روایت सही मुस्लिम में है 238। देखिए इस पे तो आपका बहुत ही यकीन बढ़ता जाएगा कि कितनी सच्ची बात है। जब हम लेटते हैं ना तो हमारी सब रतूबतें किस्म की फ्रीज हो जाती हैं जिस्म में हमारी पोजीशन की वजह से। और थोड़ा सा साइंस को भी टच कर लीजिए तो ग्रेविटी की वजह से हमारे जिस्म की सेक्रीशंस बाहर आना चाहती हैं, लेकिन जब हम रात को बिल्कुल वर्टिकल लेटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं। तो बिस्तर पे बैठिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या थी नींद से जब बेदार होते, और ज़ाहिर है कि फजर से पहले यानी तहज्जुद का वक्त होता, आप अपने बिस्तर पे बैठते, नाक 3 दफ़ा झाड़ना, जैसे हमारे यहाँ भी अक्सर लोग करते हैं, लेकिन बाद लोग वॉशरूम में जाकर करते हैं, अगर नैपकिन पास है तो नैपकिन से मदद लीजिए, यानी पूरी तरह जिसको नाक को सुरकना कहते हैं ऐसा कीजिए। एक तो जिस्म में या नाक में कोई रतूबत या कोई ऐसी आलाइश होगी वो निकल जाएगी जुकाम वगैरह की सूरत में। लेकिन आप आज अगर ये बात पहली दफा सुन रहे हैं ना, आप इसको आजमा के देखिएगा, आपका दिमाग आपका सार इतना हल्का महसूस करता है। और आप जानते हैं कि फजर के वजू से पहले ये करना लाजमी भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 दफा नाक को झाड़ेंगे, और पता चला कि शैतान नाक के बांसे में रात गुजारता है। सुभान अल्लाह, देखिए कहाँ तक ये जाने की कोशिशें करता है। फिर उठकर दुआ क्या कहेंगे, अब हम अपनी दुआओं में नींद से बेदार होने की दुआएं सीख रहे हैं, सोने की दुआएं वहां तक थी। और जाहिर है कि मोमिन रात को ही सोता है और रात को ही उठ जाता है, इसलिए इसको हम एक ही जगह पे ले रहे हैं। ये नहीं कि दिन चढ़े पे दुआएं मांगता है, नहीं, अल्लाह के नबी उठते थे और उठते ही क्या कहते थे, पहली दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जिंदा किया बाद इसके कि इसने हमें मार दिया था, और इसी की तरफ उठकर जाना है। ये रिवायत है बुखारी की 6312 और सही मुस्लिम 2711। आप देखिए सोए क्या थे, बिस्मिकल्लाहुम्मा अमूतु, तेरे नाम के साथ सोता हूँ अल्लाह, और उठे कैसे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। कितनी मुख्तसर डिक्शनरी है ईमान वाले की, बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं वो करता, करके दिखाता है, अल्लाह के साथ अपना मामला सीधा रखता है। तो दुआ आपको बहुत सारों को आती है, लेकिन हम दोहराएंगे भी इंशाल्लाह, और इसको मांगेंगे जब सुबह, तो रोज उठकर सोचिएगा एक नई जिंदगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा मातना, मैं तो मर गया था अल्लाह ने जिंदा कर दिया। वइलैहिन नुशूर, अच्छा जैसे आज उठकर अब अपने कामों पे लगने लगी हूँ, इसी तरह एक दिन कब्र से उठूंगी और पलट कर जाना है। ये एहसास बंदे को सीधा कर देता है। इस शऊर के साथ मिलके मांगिए।
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور।
तो जब आप इसको मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका दिल दिमाग भी उसी की तरफ डाल देगा। इसी तरह दूसरी दुआ देखिए, वो भी इससे मिलती जुलती है, नींद से बेदार होने की दूसरी दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी फी जसदी वरद्द अलैय रूही व अज़िन ली बिज़िक्री। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझे जिस्मानी आफियत दी और मुझ पर मेरी रूह लौटा दी और मुझे अपनी याद की इजाज़त दी। जी ये रिवायत देखिए, तिरमिजी की रिवायत 3401। इसमें और उसमें थोड़ा सी फ़र्क है, लेकिन इसमें कुछ मोर क्लैरिटी है। पहली बात है आफियत दी, यानी जिस्म की राहत के साथ उठाऊँ। आप देखिए अक्सर सुबह उठें तो पाँव सो जाता है, कभी कोई कड़ल पड़ जाएगा, कोई और बीमारी होती, क्योंकि हमारा जिस्म एक डिफरेंट पोस्चर में है ना जागने से। अल्लाह ने कायनात में इस तरीके की फोर्सेस रखी हुई हैं कि हम अगर लेटे हुए हैं तो वो हम पर और तरह इफेक्ट करती हैं, जागे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फर्क होती हैं। तो एक अनयूजुअल कैफियत है। और मैं अक्सर ही बिस्तर पे जब लेटू तो मैं सोचती हूँ ये हम क्या कर रहे हैं, अभी आंखें बंद करेंगे फिर हम सो जाएंगे, और 3 मिनट लगते हैं सोने में। आप मुझे क्लास में इजाजत दें, मैं आपको भी सो के दिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है सो जाना, सारी हकीकतों से फरार, सारे गमों से बेनियाजी, मुतमईन। और ऐसे ही नींद आ जानी चाहिए, ये भी एक ईमान की अलामत होती है, क्योंकि मोमिन ने अपने सारे तफक्कुरात तो दिए हुए हैं किसी और को, उसके सारे मसले मसाइल तो किसी और ने हल करने। तो मोमिन इतना लाइट माइंडेड, इतना हल्का फुल्का जहन में से होता है, उसको नहीं फिक्रें होती, उसको नहीं तफक्कुरात होते, वो ऐसी राह जाते, तफक्कुरात नहीं लाता। जो भी हुआ ही नहीं उसका क्या गम, और जो हो के गुजर गया अब उसको गम करने से क्या फायदा। रह गया आज रब के हवाले, बेनियाजी लाई अपने अंदर, रात जाती बातें सोच सोच के अपने आप को हलकान करना, ये भी दुरुस्त चीज नहीं है। तो जब आप ये दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह आपको महसूस होगा, और आप देखिए कि रद्द अलैया रूही, इसमें भी वही करार है कि अहयान अबाद मामातना। तो आइए जरा इसको भी मांगिए और इसको महसूस कीजिएगा।
الحمد لله الذي عافاني في جسدي الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وأذن لي بذكره الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره
आमीन। फिर इसके बाद आप देखिए कि जब भी ये दुआएं हम मांगे तो अपने बच्चों को अभी से इसकी आदत डालिए। पता क्या होता है कि बचपन में हमारा हाफ्जा बहुत तेज होता है, बच्चों को 2-4 बार आप एक याद करवाएं बात तो याद हो जाती है, बड़े होने के बाद याद नहीं रहती। तो ये दुआएं आपकी जुबान से सुनते सुनते वो सीख जाएंगे। अभी अगर आपके बच्चे छोटे हैं जैसे 4-5 साल के, आप थोड़ी सुनिए बात से पढ़िए। बच्चों को अक्सर माएँ सुलाने जाती हैं, बेस्ट टाइम है, खुद भी पढ़ लें उनको भी सुना दें। चलो मैं भी पढ़ती हूँ, चलो बेटा आओ मैं आपको सुलाऊं। बच्चे सो रहे हैं, आप पढ़ती जाओ उन्हें कि आप भी ऐसे ऐसे पढ़ें, वो 2 दुआओं के बाद भी सो चुके होंगे इंशाल्लाह। और इसमें जब जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उतना असर होगा। फिर इसके बाद देखिए खूबसूरत अमल जो आप बेदार होने के बाद करते थे, वो सूरत आले इमरान का आखिरी रुकू था, जो अल्लाह के नबी सल्लम वुजू करने से पहले ही अपने बिस्तर पर बैठते और इसको अदा करते, इसको पढ़ते, और इसके बाद फिर इसके ऊपर गौर व फिक्र करते। आइए जरा इसको भी सुनते हैं सीखने की नीयत से, और फिर इसके तर्जमे पे साथ ही साथ गौर व फिक्र करेंगे, और देखिएगा कि सुबह उठते ही पहला पैगाम क्या मिल रहा है। आइए देखते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين
آمين
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
अब देखिए कि इतना खूबसूरत ये रुकू, ऐसे लगता है कि दीन और दुनिया की तालीम को जमा कर दिया और कायनात पे गौर व फिक्र के बाद रब्बे कायनात से ताल्लुक जुड़ गया। आइए जरा इसका तर्जमा सुनिए। बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात दिन के बदल बदल कर आने जाने में इन लोगों के लिए अजीम निशानियां हैं जो साहिब अक्लो दानिश हैं। वो लोग जो उठते बैठते और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे रब, तूने इस सब कुछ को बेफायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस तू हमें क़यामत के दिन अजाब दोजख से बचाना। ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक जिसे तू दोजख में डाल दे इसे यकीनन तूने रुसवा कर दिया और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। ऐ हमारे रब, बेशक हमने एक पुकारने वाले को यानी मनादी को ईमान का ऐलान करते हुए सुना कि तुम अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। ऐ हमारे रब, बस तू हमारे गुनाह माफ फरमा दे और हमसे हमारी सब बुराइयां दूर कर दे और हमें नेक बंदों के साथ मौत दे। या रब, हमें वो कुछ इनायत फरमा जिसका तूने अपने रसूलों के जरिए से हमसे वादा फरमाया था और हमें क़यामत के दिन रुसवा न करना। बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। बस इनके परवरदिगार ने इनकी दुआ ये कहकर कबूल फरमाई कि मैं तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल जाया नहीं करता, मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। लिहाजा जिन्होंने हिजरत की और जिन्हें इनके घरों से निकाल दिया गया और इन्हें मेरी राह में तकलीफ दी गई और वो लड़े और शहीद कर दिए गए, तो मैं जरूर इनसे इनकी बुराइयां दूर करूंगा और यकीनन इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से सिले के तौर पर है और अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन सिला है। तुम्हें काफिरों का शहरों में घूमना फिरना हरगिज धोखा न दे, ये फायदा तो मामूली है। फिर इनका इंजाम दोजख है और वो बदतरीन बिछोना है। ताहम जो लोग अपने रब से डर गए उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो इनमें हमेशा रहेंगे। ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से मेहमानी के तौर पर है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेकों के लिए बहुत बेहतर है। और यकीनन कुछ अहले किताब ऐसे हैं जो अल्लाह पर और जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और जो कुछ इनकी तरफ नाजिल किया गया इस पर ईमान लाते हैं, वो अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। वो अल्लाह ताला की आयतों को मामूली कीमत के इवज नहीं बेचते। यही लोग हैं जिनके लिए इनके रब के पास बेहतरीन सिला है। बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ ईमान वालो, सब्र करो, मुकाबले के वक्त साबित कदम रहो और मोर्चा बंद होकर तैयार रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये क्या है? ये दीन दुनिया की खुशहाली का एक एजेंडा है। आप देख रहे हैं कि सुबह उठते ही जो पहला पैगाम दिया जाता है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक मकसद के साथ पैदा किया। कायनात पे गौर व फिक्र की दावत है, उठते बैठते रब को याद करने की बात है और मकसद हयात को समझने की बात है कि मा खलकता हाजा बातिला। फिर फिक्र लगी भी है तो क़यामत के दिन की, अजाब दोजख से बचने का गम लगा हुआ है, दोजख की आग में डलने की फिक्र है اور اسی طرح فکر یہ ہے کہ اگر ہم ایمان نہ لائے تو ہمارا کیا بنے گا. پھر اپنے ایمان کو بیچ میں وسیلہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ایمان کو قبول کر لے, ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہماری برائیاں دور کر دے. کتنا پازیٹو ایٹیچیوڈ ہے جس کے ساتھ ایک بندہ صبح کرتا ہے, یا رب ہمیں وہ بخش, وہ دے, وہ عنایت کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا, یعنی دنیا میں ایمان والوں کو عزت, ان کی فتح, ان کی نصرت, اور اسی طرح سے پھر قیامت کی رسوائی سے بچنا. دیکھیں دنیا دار جو بھی ہوتا ہے نا وہ کائنات پہ غور کرتا ہے, یعنی سائنس میں جاتا ہے نا تو رب سے دور ہو جاتا ہے. آج یہی بنیادی مسئلہ ہے, کچھ لوگ صرف سائنس کے ذریعے کائنات کے راز ٹٹول رہے ہیں لیکن وہ اللہ سے نہیں جڑے ہوئے, اور جو اللہ سے جڑے ہوئے ان کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دین دنیا کا بہترین کمبینیشن ہے. پہلی وحی میں بھی آپ دیکھتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق کے بعد بچے کی تخلیق کی باتیں کی گئیں, یہاں بھی یہی ہے. دنیا کے لیے بھی اٹھو, دین کے لیے بھی اٹھو. صبح ہوئی ہے, اگر تمہیں دنیا میں خلافت کا حق ادا کرنا ہے تو تمہیں دنیاوی تعلیم بھی لینی پڑے گی, کیونکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, آدم کے ذریعے خلافت کی بات تھی. لیکن اگر امامت لینی ہے, اگر ورلڈ لیڈر بننا ہے تو ابراہیم کے طریقے پہ علم الوحی کو لینا پڑے گا. صبح اٹھتے ہی یہ پیغام دیا کہ تم اپنے دین اور دنیا کے علم کو لے کر بسم ربکا پہ پہنچ جاؤ. ایک لیپ میں بیٹھا شخص بھی غور کرتا ہے لیکن اس غور کے بعد وہ اپنے کندھے تھپتھپاتا ہے کہ میں نے یہ کچھ ڈسکور کیا, اور ایمان والا سب کچھ کر کے کہتے ما خلقتا ہذا باطلا. پھر عورت مرد کی بانٹ بھی فرق کر دی گئی, عمل سب کے برابر ہوں گے. ہجرتوں کی بات ہو گئی, تکلیفوں کی بات ہو گئی, رب کے راستے میں لڑنے کی باتیں ہوئی, یہ مقصد آج ہمیں بھول گیا. پھر جنتوں کی باتیں, اللہ کے صلے کی باتیں, پھر کفار کا شہروں میں چلنا پھرنا, ان کی دنیاوی ترقی, مطلب اس سے بہت زیادہ تم اپنے آپ کو مسخور نہ کرنا. اگر کوئی رب کو نہ پہچان سکا, پوری کائنات کو مسخر کر لے, اس قدر اعظم کیوں نہ بن جائے, ساری دنیا کے اوپر اس کی حکومت کیوں نہ ہو جائے, لیکن اصل چیز تو وہ ہے جو آخرت ہے. اور پھر جو ان باتوں کو سن کے ڈر جائے تو پھر باغات کی خوشخبریاں, نہروں کی خوشخبریاں, اللہ کی طرف سے مہمان نوازیوں کی باتیں, اور اللہ کے پاس جو ہے وہ سب بہتر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب کی بھی خوبیاں بیان کر دی کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور وہ اللہ کے اس نبی کو بھی مانتے ہیں, وہ پھر دنیاوی فائدوں کی اثر آیتوں کو نہیں بدلتے, اور ایسے لوگ اللہ ان کے ساتھ ہے, حساب وہ لے گا. تم بس اپنے کام کرو. اور آخری آیت تو ایک ایجنڈا ہے, چار نکاتی منہج ہے, کس برو سا برو ورا بتو اتک اللہ. ہمیں انفرادی زندگی میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے, اجتماعی زندگی میں مصابرے کی ضرورت ہوتی ہے, کھڑے ہو جاؤ اور دوسروں کو تھامو بھی, ثابت قدم رہو, کیونکہ ایک بندے کے قدم اکھڑتے ہیں تو چار لوگ اور بھی اکھڑ جاتے ہیں, اور مورچہ بند ہو کر تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو. آپ ان آیتوں کی تفسیر سنیے, آپ کو اس میں سے کتنا کچھ دکھنے والا ہے. تو ہم نے پھر صبح و شام کی دعائیں پوری کر لیں, اور ان دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو سٹک آن کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ رات کی دعاؤں کے آخر میں یا سونے کی دعاؤں میں ہم نے کیا سیکھا تھا, کہ اللہ کے نام سے ہی سونا ہے. سوتے وقت رات کو اگر کوئی گھبراہٹ ہو گئی, کوئی برا خواب دیکھ لیا, تو اللہ کی پناہ کی دعا مانگنی ہے, اور اللہ کی عظمت کے کلمات باعث سے سکون ہے. رات کو اگر جاگے تو مسنون کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے, اور اگر دعا کی تو قبول, نماز کی تو قبول. اور اب ہم نے نیند سے بیدار ہونے کی ساری دعاؤں کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھا, کہ بندہ مومن کے روز و شب رب کے نام سے جڑے ہوتے ہیں. صبح اٹھتے ہی جب اتنی پیاری باتیں ہوں گی, اور ابھی تو اٹھ کر وضو بھی نہیں کیا, ابھی تو بستر ہی چھوڑا ہے, تو اتنا کچھ اللہ سے کر لیا سیٹ. تو دن کے آغاز میں بتا دیے کہ دین کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرو, دنیا کے لیے بھی کرو, تمہیں اللہ ضائع نہیں کرے گا. محنت کی عادت ڈالو, مسلمان کو دنیا کے اندر بھی آگے جانا ہے. تو ہم نے کیا سیکھا, کہ جاگنے کے اذکار یعنی بیدار ہوتے ہی اللہ کی یاد, اور نیند موت کی بہن ہے. आप बस दुआ में मौत का लफ्ज देखती हैं तो असल में ये मौत की याद भी है। और तहज्जुद के लिए उठते हुए आल इमरान की आखिरी 10 आयात ये मुस्तकिल सुन्नत है, इसको अपना लीजिए। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो, अल्लाह ताला नसीब करे, बरकत दे, जो सीखे उस पे अमल की तौफीक दे, हमारे सोने जागने रात दिन सब कुछ बदल जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।